मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सका और ना ही दे सकूंगा, पर तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हो सके तो मेरे बाद मेरे परिवार और मेरी बेटी को संभाल लेना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना, बस कभी कभी उनसे मिल लेना। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ और करने वाला हूँ, उसके बाद तुम और मुझसे जुड़ा हर इंसान मुझसे नफरत करे, ताकि मेरे जाने से उनको कोई फर्क ना पड़े और वो यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहें। बहुत जल्द हमारी मोहब्बत की नफरत भरी दास्तां का अंत होगा और शुरुआत होगी तुम्हारी नई जिंदगी की, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। दुख की छाया भी तुम पर नहीं पड़ेंगी। बस कुछ वक्त है मेरे पास जिन्हें मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पता नहीं इसके बाद ये सुकून भरे पल कभी मेरी जिंदगी में आएंगे भी या नहीं। शान की आंखें बनीली हो गईं। वो कुछ पल नम आंखों से खामोशी से आरवी के उदास चेहरे को देखता रहा, फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उठकर खड़ा हो गया। बड़े ही एहतियात के साथ उसने आरवी को ठीक से बेड पर लिटाया, फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए तुरंत ही वहां से चला गया। उसके जाते ही आरवी की आंखों के कोरों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके कनपट्टी को भिगो गई। उसका दिमाग भले सो रहा था, पर शायद उसके दिल ने शान की बातों में झलकते दर्द को महसूस कर लिया था और वही दर्द और बेबसी आंसू बनकर उसकी आंखों से बह गया था। शान सही था या गलत ये कहना जरा मुश्किल था, पर उसका प्यार सच्चा था और वो आरवी को तकलीफ भी उसे तकलीफ से बचाने के लिए दे रहा था। अब देखना ये था कि क्या सच में उनकी मोहब्बत की नफरत भरी दास्तां का अंत वही होने वाला था जिसकी कल्पना करके वो ये सब कर रहा था, या किस्मत ने कुछ और ही सोचा हुआ था उनके लिए जिससे आरवी और वो दोनों ही अनजान थे। खैर, अगली सुबह एक नया सवेरा लेकर आई थी। शान तो अपने ख्वाब को देखकर उठने के बाद दोबारा सो ही नहीं सका था। आरवी को देख आया था, पर सपने में उसने उसे दर्द में देखा था और अब वो खुद उस दर्द से बेचैन था। तभी से वो जिम में पंचिंग बैग पर पंच पर पंच बरसाए जा रहा था, शायद अपनी बेबसी और गुस्से को खुद पर ही निकाल रहा था। करीब 7 बजे उसने अपने पसीने से भीगे चेहरे को टावल से पोंछा और जिम से बाहर निकलने लगा। ठीक इसी वक्त आरवी उसका जूस लेकर जिम के बाहर पहुंची और दोनों लगभग एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। आरवी झट से 2 कदम पीछे हट गई, पर बोली कुछ नहीं। शान कुछ सेकंड तो उसके उदास मुरझाए हुए चेहरे को देखता रहा, फिर उसने अपने चेहरे के भाव सख्त करते हुए रौबदार अंदाज में कहा, यहाँ क्यों आई हो तुम? आरवी ने निगाहें उठाकर उसे देखा और ट्रे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कल रात को आपने ही मुझे मेरा पत्नी धर्म याद दिलाया था ना, तो सोचा क्या हुआ अगर आप अपना पति धर्म नहीं निभाते तो। मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी ही चाहिए, क्योंकि भले आप ये भूल गए कि मैं सिर्फ ठाकुर साहब की बेटी ही नहीं आपकी पत्नी भी हूँ, पर मैं ये चाह कर भी नहीं भूल सकती कि आप बदकिस्मती से पति हैं मेरे। आरवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो शान की निगाहों से निगाहें में आते हुए उस पर तंज कस रही थी। ये देखकर शान बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि गुस्से और नाराजगी में आरवी का यही रूप सामने आता था, पर उसके कहे शब्द उसके दिल में चुप से गए थे। लेकिन उसने दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। एक बार फिर अपनी भावनाओं को, दर्द को अपने सख्त चेहरे के पीछे छुपा लिया और उसके तरफ 1 कदम बढ़ाकर उसके थोड़ा नजदीक आ गया, पर आरवी ने कदम पीछे नहीं हटाए। वो वही डंट कर खड़ी रही। शान ने उसको घूरते हुए इविल मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बदकिस्मती से मैं पति हूँ तुम्हारा और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी है। वैसे मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानती हो। मुझे तो लगा था कि लोगों को धोखा देने के अलावा तुमने अपने बाप से कुछ सीखा ही नहीं होगा, पर शायद गलती से तुम्हारे माँ के कुछ संस्कार आ गए तुम में। गुड, अच्छा है, किसी काम तो आओगी तुम मेरे। मेरी पत्नी तो तुम कभी बन नहीं सकती, पर कोई बात नहीं, मेरी जरूरतों का ख्याल रखने वाली नौकर बनकर ही इस घर में पड़ी रहोगी। शान ने एक बार फिर अपने शब्दों के तीर से आरवी के नाजुक से दिल को छलनी कर दिया था। दर्द उसकी आंखों में झलकने लगा था, लब चाहकर भी कुछ कह ना सके। शान अब बिना एक पल गवाए जूस का ग्लास लेकर आरवी को साइड करते हुए वहां से चला गया। कुछ कदम आगे जाकर उसने पलट कर देखा तो आरवी अब भी वही खड़ी थी। शान की आंखों में बेबसी और दर्द के भाव उभर आए। वो तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। आरवी अब भी वही स्तब्ध सी खड़ी थी। जब उसके कानों में दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पड़ी, तब जाकर उसकी पलकें हल्की सी हिली। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही सुखा लिया और अंशु के रूम में चली आई। कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो गए थे। सबने मिलकर शान का बहिष्कार किया हुआ था। इन दिनों कोई उससे बात ही नहीं करता था। अभी भी डाइनिंग टेबल पर सब गंभीर चेहरों के साथ खामोश बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आरवी अंशु को भी खिला रही थी और जैसे तैसे करके खुद भी कुछ निवाले खा लिए थे उसने। खैर, नाश्ता खामोशी से हुआ। फिर शान ने अपनी चेयर पर से उठते हुए कहा, बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, अंशु को लेकर जल्दी आओ। रौबदार आवाज में ऑर्डर देकर शान लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से चला गया, पर पीछे छोड़ गया ढेरों सवाल जो वहां मौजूद लोगों के जहन में उठ गए थे। आरवी तो उसे जवाब तक नहीं दे सकी। उससे पहले ही अर्पिता जी ने उसी से सवाल कर लिया, आरवी बेटा, आप शान के साथ कहाँ जा रही हैं? अर्पिता जी कुछ चिंतित सी नजर आ रही थी। उनका सवाल सुनकर सुयश जी ने जाते हुए शान को रोष भरी नजरों से घूरते हुए कहा, लेकर जा रहे होंगे आपके बेटे फिर से इन्हें अपने साथ कहीं बेइज्जत करने, पर आप उन्हें बता दीजिए कि हमारे घर की बहू अब उनके साथ कहीं नहीं जाएगी। सुयश जी का गुस्सा अब भी जरा भी कम नहीं हुआ था, और गुस्सा था भी जायज। सुयश जी के कहे शब्द जब शान के कानों में पड़े तो उसके कदम ठिठक गए। उसने पलटकर सबको देखा और बिना किसी भाव के बोला, मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाने और अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार अपनी बहू से पूछ लीजिए कि वो कहाँ जा रही है मेरे साथ, और साथ में ये भी पूछ लीजिएगा कि मैं जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा हूँ या वो अपनी मर्जी से साथ चलने को तैयार हुई हूँ। और जब आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो मेरी पत्नी को बाहर भेज दीजिएगा, क्योंकि लेट होना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शान के देवर में जरा भी कमी नहीं आई थी। हाँ, क्योंकि सुयश जी से बात कर रहा था तो थोड़ा तमीज से बात कही थी उसने, और फिर वहां से चला गया। शान की बात सुनकर अब सबकी निगाहें आरवी की तरफ घूम गई। इस बार सुभाष जी ने चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, बेटा, शान आपको कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हैं? आरवी ने सबके परेशान चेहरों को देखा और फिर शांत लहजे में बोली, डैड, वो आज से मैं उनके प्ले में एक्ट करने वाली हूँ, तो वही साथ जाने के लिए कह रहे थे। उसका जवाब सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। अर्पिता जी ने चौंकते हुए सवाल किया, आप एक्टिंग करने जा रही हैं, वो भी शान के प्ले में? आरवी ने तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बड़ी माँ। सुयश जी जो खामोशी से सारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने आरवी के चेहरे को गंभीरता से देखते हुए पूछा, क्या आपको शान ने उसके लिए मजबूर किया है? उनका सवाल सुनकर आरवी को कल की शान की कही बातें याद आ गईं, जिससे वो कुछ पल खामोश रह गईं। फिर उसने इनकार में सर हिलाते हुए सहजता से बोली,
नहीं बड़े पापा, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, वो रश्मि ने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, और जब अब मौका मिला तो मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने ऑडिशन दिया और कल ही रेहान जी ने बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, और आज से मुझे रिहर्सल पर जाना है। मैंने ये बात मास्टर मल्होत्रा को बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी वहीं जाना है, तो साथ ही चले जाऊँ। आरवी ने हर बात झूठ कही और उस झूठ में कईयों का नाम शामिल कर दिया, क्योंकि पहले ही उसके और शान के वजह से सब परेशान थे। वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, और जितने विश्वास से शान अपनी बात कहकर गया, वो अगर उसकी बात से मुकर जाती तो फिर से घर में हंगामा होता, और वो यही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सबसे झूठ कह दिया। हालांकि उसके इस झूठ पर किसी को विश्वास नहीं था, पर कोई कुछ कह भी नहीं सका। सबसे इजाज़त लेकर आरवी अंशु का बैग और उसे लेकर बाहर आ गई। गेट से बाहर निकलते ही उसको सामने कार से टेक लगाए खड़ा शान दिखा, पर उसने नाराज़गी से उस पर से निगाहें फेर लीं और उसको नज़रअंदाज करते हुए जाकर पीछे वाली सीट पर अंशु के साथ बैठ गई। शान भावहीन सा उसको देखता रहा, फिर आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे बैठी अंशु आरवी से सवाल कर रही थी, बातें कर रही थी, जिनका जवाब भी वो बड़े प्यार से दे रही थी, और शान मिरर में चोर निगाहों से उन दोनों को देखकर अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा था। कुछ देर बाद कार अंशु के स्कूल के बाहर रुकी तो आरवी अंशु के साथ बाहर निकल गई। आज शान भी बाहर आ गया, ये देखकर आरवी कुछ चौंक जरूर गई, पर उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। शान ने अंशु के गाल को चूमते हुए उसको अंदर जाने को कहा तो अंशु आरवी के दुपट्टे को पकड़कर खींचने लगी। आरवी नीचे झुकी, फिर उसने घुंघरेले बालों को अपनी हथेलियों से संवारते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर उसको कुछ बातें समझाने और अपना ध्यान रखने का कहकर उसको अंदर जाने को कह दिया। अंशु हाथ हिलाकर दोनों को बाय कहते हुए अंदर जाने लगी। उसके जाने के बाद आरवी फिर से पीछे बैठने लगी, पर शान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामकर उसको रोक दिया।